ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद स्ट्रांग रूम में रखे गए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के लिए दो स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी अंतरिम जमानत के लिए 7 दिन के विस्तार की मांग की है। पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में इंडियन ऑयल ने भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली अत्याधुनिक बस प्रदान की। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार द्वारका स्थित वायु वाल्व की विस्थापना के कारण बुधवार और बृहस्पतिवार को राजधानी के कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी और आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में के परिसर में एक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली में आम चुनाव के समाप्त होने के बाद स्ट्रांग रूम में रखे गए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्री कृष्णमूर्ति ने बताया कि मतदान के सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार ये व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि अगले महीने की 4 तारीख को होने वाली मतगणना के लिए पूरी तरह से सक्रियता बरती जा रही है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने 2 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की है। केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की तैनाती स्ट्रांग रूम के बाहर पहले घेरे में की गई है, वहीं दिल्ली पुलिस बाहरी घेरे में पहरा दे रही है। इसके अलावा स्ट्रांग रूम और गलियारों के सील बंद दरवाजों की 24 घंटे निगरानी सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जा रही है। स्ट्रांग रूम खोलने और बंद करने के दौरान वीडियोग्राफी कराए जाने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही अधिकृत अधिकारियों के आने जाने का भी हिसाब किताब रखा जा रहा है। स्ट्रांग रूम के पास एक परिचालन नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। दिल्ली के 7 संसदीय सीटों के लिए 7 जगहों पर ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों को रखने की व्यवस्था की गई है। यह 7 जगह है एसकेवी भारत नगर, आईआईटी नंदनगरी, राष्ट्रमंडल खेलगांव खेल परिसर, अटल आदर्श बालिका विद्यालय गोल मार्केट, डीटीयू शाहबाद दौलतपुर, एनएसयूटी द्वारका और जीजाबाई महिला आईटीआई सीरी। प्रादेशिक समाचार के लिए आकाशवाणी दिल्ली से आदर्श।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक ने आज सर्वोच्च न्यायालय से अपनी अंतरिम जमानत के लिए 7 दिन के विस्तार की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए श्री केजरीवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा कि उनके डॉक्टरों ने गंभीर रोगों की आशंका व्यक्त करते हुए कई परीक्षण करवाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि 7 दिन का समय इसलिए मांगा है ताकि वे 1 सप्ताह में अपने सभी परीक्षण करा सकें। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने संदेह जताया कि हाल के दिनों में बिना किसी कारण उनका 7 किलो वजन गिर चुका है, जो कि चिंताजनक है।
7 किलो वजन अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने में गिर जाए बिना किसी कारण के, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर्स ने कहा है, बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं, एक ही हफ्ता मैंने मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने सारे टेस्ट करा लूंगा। ऐसा हो सकता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो है ये बहुत सीरियस चीज है, कोई सीरियस बीमारी हो सकता है अंदर चल रही हो और पता ना चले, और बाद में फेज 2 फेज 3 में पहुंच जाए बीमारी, जब बहुत लेट ना हो जाए। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि ये सारे अगर टेस्ट हो गए तो कम से कम पता चल जाएगा।
श्री केजरीवाल की याचिका की आलोचना करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन जब उनकी जमानत की अवधि समाप्त होने जा रही है तब उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सवाल उठाया कि अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल का स्वास्थ्य खराब है तो वे पंजाब में 3 दिवसीय चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल ड्रामेबाज हैं, पूरे प्रचार में उनकी तबीयत ठीक थी, अभी भी पंजाब के प्रचार में है, लेकिन अंतरिम बेल की अवधि बढ़ाई गई, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, नई नई बीमारियां बताई जा रही हैं। अगर आपको बीमारियां थी तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराइए, और न्यायिक हिरासत में का इलाज नहीं होता है क्या? लेकिन जानबूझकर अब पंजाब के प्रचार में निकल गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करें 7 दिन बढ़ाई जाए।
पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इंडियन ऑयल ने भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली अत्याधुनिक बस प्रदान की है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और इंडियन ऑयल के अध्यक्ष एसएम वैद्य की मौजूदगी में इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आयोजित एक कार्यक्रम में इससे संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल का उद्देश्य भारी वाहनों में हाइड्रोजन और बैटरी आधारित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। जनरल पांडे ने इस अवसर पर कहा कि सेना पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अपनी संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हाल में विवेक विहार स्थित अस्पताल में हुए हादसे पर स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ आज बैठक की। श्री भारद्वाज ने सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को अगले महीने की 8 तारीख तक अपना फायर ऑडिट पूरा करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने इस ऑडिट पर आधारित अनुपालन रिपोर्ट दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को सौंपने के निर्देश दिए हैं। श्री भारद्वाज ने निर्देशित किया कि अब सारे नर्सिंग होम और अस्पताल को फायर एनओसी लेना अनिवार्य है। इससे पहले 9 मीटर से कम ऊंचाई वाले या भूतल से पहले तल्ले तक सीमित अस्पताल बिना फायर एनओसी के भी चलते थे। स्वास्थ्य मंत्री ने गर्मी की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार के 26 अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए प्रत्येक अस्पताल में 2 बिस्तर आरक्षित करने का भी निर्देश दिया। वहीं एलएनजेपी अस्पताल में 5 बिस्तर आरक्षित होंगे। भाजपा ने इस हादसे के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि विवेक विहार स्थित ये अस्पताल आवश्यक मापदंडों पर खरा नहीं उतरा था, फिर भी प्रशासन ने इसे मंजूरी दी थी। आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एआईआईए के साथ नई दिल्ली में एआईआईए परिसर में एक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीमा क्षेत्र और आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करना है। कार्यक्रम में बीमा कंपनियों के सीईओ और सीएमडी के साथ साथ आयुष अस्पताल के मालिक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे सहयोग को प्रोत्साहित करना है जो जनता के लिए आयुष उपचार की पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ाएं और देश भर में समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा दें। इस अवसर पर आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने इसे आयुष और बीमा कवरेज के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने आयुष क्षेत्र में बीमा को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि आध्यात्मिक रूप से सबल होना ही वास्तविक सशक्तिकरण है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आध्यात्मिक मूल्य सभी धर्मों के लोगों को एकजुट करते हैं। राष्ट्रपति नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रह्मकुमारी संगठन द्वारा आयोजित एक समारोह में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के राष्ट्रीय समारोह को संबोधित कर रही थीं।
मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने के लिए ब्रह्मकुमारी संस्थान द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें देश विदेश के युवाओं की भागीदारी रहती है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही वास्तविक सशक्तिकरण होता है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने युवाओं में आध्यात्मिक मूल्य जगाने की दिशा में ब्रह्मकुमारीज परिवार की सराहना की। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बंद होने की अफवाह का आज खंडन किया। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी ने बताया कि सोशल मीडिया पर झूठा दावा किया जा रहा था कि पुनर्विकास योजना के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बंद किया जाएगा और यहां से चलने वाली सभी ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों पर विस्थापित किया जाएगा। पीआईबी ने बताया कि रेल मंत्रालय ने ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य स्वदेशी प्रतिभा और रोजगार में वृद्धि को बढ़ावा देना है। श्री मोदी ने एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के जरिए लोगों को 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है। उन्होंने एजेंसियों की भ्रष्टाचार पर जांच का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर आधारित है और साक्ष्य आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करना है, न कि धारणा के अनुसार चलना। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के हर फैसले के केंद्र में राष्ट्र प्रथम की नीति है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने सूचना दी है कि द्वारका स्थित वायु वाल्व की विस्थापना के कारण बुधवार और बृहस्पतिवार को राजधानी के कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई द्वारा कराला कंझावला रोड के पास हो रहे काम की वजह से 200 मिलीमीटर व्यास वाले इन वॉल्व को हटाया जा रहा है। इसके कारण द्वारका सबसिटी कैलाशपुरी महावीर एनक्लेव और मंगलापुरी समेत अन्य इलाकों में दिनभर पानी नहीं आएगा। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आपातकाल की स्थिति में कॉल करके पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। नोएडा में आकाशवाणी के 64 वर्षीय एक सेवानिवृत्त कर्मचारी जनकदेव शाह को कल एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है।
नोएडा पुलिस ने कहा है कि ये दुर्घटना कल सुबह तब हुई जब जनक देव शाह अपने घर के पास बाजार से दूध खरीदने जा रहे थे। नोएडा पुलिस ने बताया कि एक राहगीर ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया और पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस प्रतिक्रिया वाहन घटनास्थल पर पहुंचा और उन्हें पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जाँच की जा रही है। आकाशवाणी की महानिदेशक ने जनक देव शाह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अमन यादव।
आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अतिरिक्त दिल्ली कांग्रेस ने भी अपने प्रदेश कार्यालय में उनकी पुण्यतिथि मनाई। एक प्रेस वक्तव्य के माध्यम से पार्टी ने बताया कि उनके नेताओं ने पंडित नेहरू की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक पार्षद पूर्व निगम पार्षद जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष विभिन्न संगठन और विभागों के चेयरमैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पुरानी सरकारों के समय की अड़चनों और पुरानी प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए पिछले एक दशक में केंद्रीय बजट की शुचिता और विश्वसनीयता में काफी सुधार देखा गया है। वित्त मंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमारे बजट की विशेषता राजकोषीय विवेक पारदर्शिता और समावेशिता है। देशभर में भीषण गर्मी के बीच दिल्ली वासियों को आज भी तेज गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहने की संभावना है। इसके अलावा शहर के लोगों को अभी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। कल का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप जारी है, इसलिए बड़ी संख्या में सैलानी कश्मीर की घाटी की ओर गर्मी से बचने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में आम चुनाव के समाप्त होने के बाद स्ट्रांग रूम में रखे गए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के लिए दो स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी अंतरिम जमानत के लिए 7 दिन के विस्तार की मांग की है। पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में इंडियन ऑयल ने भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली अत्याधुनिक बस प्रदान की। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार द्वारका स्थित वायु वाल्व की विस्थापना के कारण बुधवार और बृहस्पतिवार को राजधानी के कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।